कहेंगे, ट्रेड कहेंगे, और एक है जो सर्विस सेक्टर में जाएंगे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, और कोई दुनिया की कोई कम्युनिटी नहीं हो सकती, चाहे क्लासलेस सोसाइटी की कोई कितनी भी बात कहे। ये चाहते हैं कि लोग हर समाज में, शिक्षक भी होंगे, सिपाही भी होंगे, दुकानदार भी होगा, कृषि खेती करने वाला भी होगा, और सेवा का भाव वाले भी व्यक्ति होंगे, है ना। तो वेद की बातें सार्वभौमिक है। अब ये तो हुआ समाज, जो इसको समष्टि बोलते हैं, लेकिन समाज बनता क्या है, एक एक इंडिविजुअल से, उसको व्यष्टि बोलते हैं, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। तो अब आई बात, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को भी, उसका जो जीवन है उसको भी चार भागों में बांटा गया। तो ये हमारा वेद का क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है, वर्णाश्रम व्यवस्था। जो समाज को चार भागों में बांटा उसको कहा वर्ण व्यवस्था। जो इसके अलावा पांचवा कहेगा वो अवर्ण है, वो क्रिमिनल है, वो लाइबिलिटी बन जाएगा, है ना। इन चार में से कोई चीज तुम अपना लो और समाज में सबके लिए एक एसेट बन जाओ, नहीं तो आप लाइबिलिटी बनो। और वैसे ही एक व्यक्ति को अपना जीवन बनाना है तो उसको ये चार आश्रम भी समझने होंगे। तो बोलचाल में हमारे संस्कृत शब्द हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो बोलचाल की भाषा में कहेंगे, और ये भी आज कोई दुनिया ऐसी नहीं है जहां ये सब ना होता हो, ये सार्वभौमिक है। कोई ऐसा नहीं कहेगा तो खुद अपना जीवन नष्ट कर देगा। तो ये सब बड़े नेचुरल चीजें हैं, जैसे वो वर्ण व्यवस्था बड़ी नेचुरल है, किसी का पढ़ाई में मन लगता है, किसी का खेलकूद में मन लगता है, किसी का काम कुछ और करने का मन करता है, सेवा में या बिजनेस करने में। तो सब तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, वो अपने अपने गुण कर्म स्वभाव। गुण यानी आपने जो नॉलेज और स्किल पैदा की है, गुण और कर्म उसमें आ गया, स्वभाव आ गया आपका टेम्परामेंट, आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव कहाँ। पढ़ लिख के भी कोई आर्मी में चला जाता है डॉक्टर बनकर, कोई डॉक्टर बनकर कॉलेज का प्रोफेसर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बनकर अपना एक हॉस्पिटल, अपना एक नर्सिंग होम खोल लेता है ना। पढ़ाई उन्होंने डॉक्टरी की ही की, नॉलेज और स्किल उनका डॉक्टर का है, मेडिसिन का है, फिजिशियन का है, लेकिन उसके बाद भी तीन रास्ते बन गए। वो इस टीचिंग और रिसर्च में जा सकता है ब्राह्मण, वो मेडिकल लाइन में जा सकता है, वो आर्म फोर्सेज में जा सकता है, तो क्षत्रिय बन गया, और वो उसी का एक बिजनेस मॉडल लेकर आगे बढ़ सकता है, तो वैश्य बन गया। तो देखिए, आपका प्रोफेशन एक है लेकिन आपका करियर पाथ अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपने अपने जीवन को कुछ बनाया है। तो जीवन को दिशा देने के लिए परमात्मा ने हमें चार आश्रम बना के दिए। तो वो बनाया कि पहले आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, स्टूडेंट लाइफ पर, ब्रह्मचर्य आश्रम पर ध्यान दो, सेल्फ डेवलपमेंट पर, है ना। एक चार शब्द मैंने लिखे हैं, स्टूडेंट लाइफ करेस्पॉन्ड टू ब्रह्मचर्य, एंड व्हाट आर यू फोकस्ड ऑन, सेल्फ डेवलपमेंट। बच्चे से हम क्या बोलते हैं, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, बड़े हो जाओगे तो हमारी सहायता करना, अभी पढ़ाई लिखाई खेल कूद ये सब पर ध्यान दो। अभी तुम्हें अपना फिजिकल डेवलपमेंट करना है, इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट करना है, इमोशनली भी स्ट्रांग बनना है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दो। और फोकस ज्यादा क्या होता है, ये तीन शब्द मैंने और लिख दिए हैं, ज्ञान कर्म और उपासना। तो अभी फोकस है नॉलेज बिल्डिंग पर, ज्ञान पर। बस हर बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, गुरुकुल भेजते हैं, जो भी है, फिर जब वो पढ़कर सेल्फ डेवलपमेंट उसका अच्छा हो गया, नाउ लड़की है, अपने आप को उसने सब संस्कारित कर लिया, आजकल कमाने भी लग जाती हैं, पर लड़का है तो बहुत आवश्यक है कि कोई कहिए पात, कमाने लायक हो गया, अपना परिवार चला सकने लायक हो गया। अब ये दोनों मिलकर बोलते हैं हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, वी विल डेवलप बिल्ड ए फैमिली। वहां पर क्या फोकस होता है, कर्म पर, है ना। यू आर मोस्टली यंग मदर एंड फादर आर वेरी बिजी इन एक्टिव। अभी हमारी मोनिका जी आए, बेचारे का पति रवि अभी कहीं बाहर ट्रेवलिंग कर रहा है, दो छोटे बच्चों को लेकर आना है, इट इज चैलेंज, लेट हो गई बेचारी। लेकिन यू कैन इमेजिन, The young parent, mother and father, are very active. The focus is karma. लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए, ये focus है या इसका मतलब ज्ञान उपासना को ignore नहीं करना है. Even though you are engaged in this, you are working for an office or some factory, you are delivering your work output, whatever it is, you are already ready to gain, always ready to accept new ideas, new learning. है ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वो दो सप्ताह के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भेज देते हैं, है ना. तो ये नॉलेज डेवलपमेंट ऐसा है जो अंतिम सांस तक चलता रहेगा, है ना. तो फोकस यही है, कर्म है, लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर दिस. सिमिलरली स्टूडेंट लाइफ में फोकस यही है, नॉलेज है, लेकिन थोड़ा कर्म भी करना पड़ता है. लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं और घर में भी माता पिता छोटे मोटे काम देते हैं, तो उससे आपका नॉलेज बेस थोड़ा और मजबूती पकड़ता है, थोड़ा और आप अच्छी तरह से जानते हैं. जैसे ये फोकस एरिया में ये भी चलता है, वैसे ही उपासना भी बहुत आवश्यक है. फोकस एरिया भले ही नॉलेज का हो, फोकस एरिया भले ही एक्शन मोड का हो, लेकिन थोड़ा टाइम आपको ये भी निकालना होगा. इस सत्संग में शुरू में हमने 10-12 मिनट उपासना की. उपासना को गलती से लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, पर हो नहीं सकता. यहां भी मैंने जो मंत्र पाठ बोले, ये तो आय समाज की स्लाइड से मैंने बॉयो किया हुआ है, जो भी पहले से चला आया. तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पहले इंग्लिश में टाइटल था ग्लोरिफिकेशन स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए प्रेयर, और उपासना के लिए टाइटल था मेरे ख्याल से, मैं याद करूं क्या था टाइटल, कम्युनियन. ये चर्च वालों का शब्द है, कम्युनियन, है ना. तो आप कम्युनियन बोलेंगे, दुनिया भर के लोग अपना अपना अर्थ लगाएंगे, और कहीं कहीं अर्थ आता है. हमारे आय समाज के नियम यहां लिखे हुए हैं हिंदी में, हिंदी वाले ओरिजिनल हैं, जो महर्षि दयानंद ने अपने हाथों से लिखे. तो दूसरे नियम का अंत में लिखा उन्होंने, उसी की उपासना करनी योग्य है, उस ईश्वर की ही, जिसका उन्होंने बहुत लंबा विस्तार से वर्णन किया. अंत में वो क्या कहते हैं, उसी की यानी केवल उसकी नहीं, केवल उसकी ही और किसी की भी नहीं. उपासना किसकी की नहीं है, केवल ईश्वर की. तो ज्ञान और कर्म कैसा है, इसमें बॉडी और माइंड काम करते हैं, है ना. बॉडी माइंड एंड कॉन्शियसनेस, हमारे आत्मा को ये सब लेप में, पांच कोशों में घेर कर इस संसार में भेजा है. दे आर अवर इंस्ट्रूमेंट्स. तो उस इंस्ट्रूमेंट से एक इनकमिंग ऑपरेशन है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. वी आर यूजिंग बॉडी एंड माइंड कॉन्स्टेंटली टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम सराउंडिंग्स. ये है नॉलेज वाला ऑपरेशन, जिसमें बॉडी एंड माइंड आर फंक्शनिंग. जब हम कर्म के मोड में आते हैं तो इट इज आउट गोइंग मोड, है ना. वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन आउट गोइंग मोड. हम एक्शन कर रहे हैं. वी आर इन्फ्लुएंसिंग द सराउंडिंग्स. हम कुछ उठा के फेंक रहे हैं, रख रहे हैं, प्लेटों को ठीक से रखते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, जो भी है. ये दोनों चीजों में, ज्ञान और कर्म में, आपके इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं वन वे और अनदर. उपासना में क्या चैलेंज है, कि अब मुझे उसके साथ बैठना है, तो ये बॉडी और माइंड इंस्ट्रूमेंट्स का अब कोई मतलब नहीं है. इनफैक्ट दे आर इनहिबिटर्स नाउ. तो उपासना में सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम डाउन. अभी आपको यहां आना था, यहां आना था, सत्संग में बैठना था. आप घर से कार लेकर चले हैं, लेकिन कार में ही आप बैठे रहते, उस इंस्ट्रूमेंट में ही बैठे रहते, तो आप इस हॉल में नहीं आ पाते, है ना. सत्संग में आने के लिए दैट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी एसेंशियल, लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर दैट इज मियरली एन इंस्ट्रूमेंट. फिर आपने कार एक सही जगह पार्क कर दी, बंद की, बाहर निकल के आए, तब यू हैव यूज द इंस्ट्रूमेंट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बट फाइनली यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट. ये बहुत आवश्यक शब्द है. बॉडी और माइंड से डिस्कनेक्ट होना आना चाहिए. डिस्कनेक्ट नहीं आएगा, आप उनके गुलाम बन जाएंगे. आपका माइंड आपको चलाएगा और दूसरे लोग आपके माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इसलिए हम यायसमाज ह्यूस्टन, हमारे पास एक बेंगलोर से सज्जन आए हैं, मैं इनको समय भी देता लेकिन इनका आज आने पर ही पता चला, कुमार साहब हैं, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, दिल्ली आ गया, में इन्होंने बहुत काम किया है, फिर बेंगलोर पहुंच गए। अब बेंगलोर पहुंच कर भी बैठे नहीं रहे, जबकि वहां दो समाजें चल रही हैं, आयुष्मान विश्वेश्वरपुरम कन्नड़ भाषी है, आयुष्मान इंदिरा नगर है हिंदी भाषी है, पर फिर भी उन्होंने, क्योंकि बेंगलोर महानगर है, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर न्यू आयुष्मान, उन्होंने एक आयुष्मान मयठल्ली खोल ली अपने ही बूते पर। इतने ये कर्मठ व्यक्ति हैं। तो मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा था कि कर्म करने के लिए भी आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है ना। लेकिन इतनी सारी आयुष्माजें हैं, वो भी ये बताएंगे कि जो उपासना आयुष्माज ह्यूस्टन में हम करते हैं वो दुनिया की किसी आयुष्माज में नहीं हो रहा। संध्योपासना का भी मजाक उड़ रहा, संध्या के मंत्र बोलकर लोग उठ जाते हैं, समझते हैं उपासना हो, ये जो उपासना हो रही है ये शुद्ध पतंजलि योग पद्धति से हो रही है, इसका आप मजाक मत उड़ाइए। जो आप रविवार को 12 मिनट सीखते हैं वो दैनिक घर में दो बार कीजिए। महर्षि दयानंद के शब्द तो इतने स्ट्रांग हैं, आप सबको स्वयं से सिर झुकाना पड़ेगा। उनका शब्द है, मैं सुनाया हूं आपको, प्रत्येक आर्य को न्यूनतम मिनिमम सुबह और शाम एक एक घंटा उपासना करनी चाहिए। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। तो आय समाज की आज बहुत चैलेंज है, ये उपासना को आय समाज के लोग अपना लेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इस उपासना को सही ढंग से हम यहां करते हैं, आप इसको सीखिए और दैनिक जीवन में सप्ताह में एक बार करके आप ये मत बोलिए मैं उपासना करता हूं। सप्ताह में एक बार आप यहां योगा क्लास करते हैं, आप बोल सकते हैं आई डू योगा, पर सप्ताह में एक बार उपासना करके कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता है मैं उपासना करता हूं। यू हैव टू डू इट ट्वाइस ए डे ऑनेस्टली, और उसमें आप जानते हैं आप कितने सफल हैं। यदि मन में कोई हलचल है आप उसकी गोद में नहीं हैं। यदि आपका मन कुछ भी कर रहा है आप याद रख लीजिए आप उपासना में नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत आसान भी है, जो प्रभु का बच्चा है, जो प्रभु का प्यारा बच्चा है उसके लिए बहुत आसान है, और जो प्रभु से बहुत दूर जा चुका है उसके लिए बहुत चैलेंज है। लेकिन महर्षि पतंजलि की बड़ी कृपा है, उन्होंने ऐसे हमें समझा दिया है, हर तरह का व्यक्ति इवन ए क्रिमिनल कैन गेट मेक प्रोग्रेस एंड सक्सीड इन उपासना। तो उपासना पर मैंने जोर दिया क्योंकि उसके बिना जीवन में आप पशुवत जी रहे हैं, जैसे पशु भी ज्ञान और कर्म में लगे होते हैं, दे ऑल्सो यूज देयर इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन उपासना ही एक चीज है जो मनुष्य कर सकता है, दूसरे पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड एनी बडी बट इट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने यहां ये लिख के ये बताया कि फोकस एरिया रिटायरमेंट फेज में उपासना हो जाएगा, लेकिन ये नहीं समझना है छोटे बच्चों को। अब तो हम संस्कृति स्कूल में भी दो चार मिनट के लिए उपासना सिखाते हैं, आप चाहे यहां हो आप चाहे यहां हो आप थोड़ी थोड़ी उपासना कीजिए, दो योर फोकस एरिया इज दिस, क्योंकि इससे आपको योग से बल मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तब आपका ज्ञान में भी निखार आएगा, आपके कर्म में भी निखार आएगा, आपको बहुत लाभ होगा। संन्यास की मैं अभी ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि आज का विषय है विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो एक प्रश्न आधुनिक काल में सब बच्चों के, नवयुवकों युवतियों के दिमाग में आता है और उनको ये समझना भी चाहिए, कोई भी आप काम करते हैं व्हाई आई एम डूइंग इट, केवल दुनिया के दूसरे लोग भी कहते हैं उनकी नकल में ही आप कहेंगे, यू डोंट हैव प्रॉपर ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। एवरीबडी, एवरी सेंसिबल पर्सन मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई एम आई डूइंग इट, मैं सत्संग में जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं। अनलेस यू हैव ए फोकस, जिंदगी आपकी टाइम पास बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, दिन दिन महीने महीने साल बीत जाएंगे। तो दिस इज वाई दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम में से अधिकांश लोग विवाहित हैं, हमारे बच्चे भी विवाहित हो गए हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो भी कोई बात नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू दिस टॉपिक। इसको समझना, जब भी समझ जाए अच्छी बात, तभी उसी दिन से हम आगे पॉजिटिव दिशा में बह सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है, व्हाई आई शुड डू मैरिज। ऑफ कोर्स वी कैन ऑल पुल टुगेदर, हम एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं, 50-100 बातें लिख सकते हैं कि यह करने से ये लाभ होगा, टैक्स भी बच जाएगा, इनकम टैक्स या ये होगा और क्या क्या न जाने क्या क्या, बहुत सारी बात आएगी। आजकल कंपेनियनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट नॉट। एकाकी जीवन रहना मुश्किल है, मैं भी 4 दिन से अकेला हूं देख रहा हूं कितना कठिन है। कभी कभी कोई पूछता नहीं, कोई फोन भी नहीं आया कि दरवाजे पर भी, आप अकेले हैं तो एकदम अकेले, पर भगवान की दया से मैं एक उपासक हूं तो उतनी परेशानी नहीं होती। बट फॉर ए नॉर्मल टिपिकल ह्यूमन बीइंग अकेले रहना भी बहुत कठिन है, और पूरा जीवन बिताना अकेले बहुत कठिन है। हाँ, आप दोस्त यदि तो बना सकते हो, और एक वैसा जीवन साथी जिससे कोई चीज छिपाने को नहीं बचे, तो उसका अपना ही एक अलग एक बात है। एज ए फैमिली हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों, घर में छोटे छोटे बच्चे खेलें, उसका एक अपना आनंद सुख है, और हमारा जो वंश परंपरा है आगे जाए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना। आज को मुझे कुछ हो गया, मैं बीमार हो जाऊं या हार्ट अटैक से मैं गिर पड़ूं, कोई तो है बगल में देखने वाला, बाद में बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा। और जो मैं वैसे खुलकर नहीं बात करना चाहता, बट सेक्सुअल अर्जेज और व्हाट एवर यू कॉल इट, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। इज इट रेलिवेंट फॉर मी टू गेट मैरिड? इतनी सारी बातें हैं, क्या इसका हम कहेंगे? और एक लंबी लिस्ट है, यू कैन रिव्यू इट, और लोग सोचेंगे। और यदि आप दिमाग लगा के सोचें, एक आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, एक स्मार्ट आदमी बोल सकता है आई कैन गेट ऑल दिस, कम टू थिंक ऑफ इट, दैट्स व्हाट ही कैन से, यस ऑल द अबव नीड्स कैन बी मेट इवन विदाउट मैरिज, इज इट नॉट? इट कैन हैपन। आजकल लोग लिविंग टूगेदर और न जाने क्या क्या प्रयोग हैं, जब चाहो बदल भी लो, उसमें तो ज्यादा ही मजा है ना, एक ही के साथ इतने साल बिताने के बदले, चेंज भी बहुत अच्छा है ना। लेकिन बहुत सारी बातें लोग सोच सकते हैं, लेकिन यदि आप यहीं के यहीं हैं, आपको वेद से दिशा नहीं मिल रही है। यही वेद की विशेषता है, वेद एक बहुत विशेष बात कहता, और आपको जानकर हैरानी होगी, मैं अब वेद मंत्रों में जा रहा हूं, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। यह महर्षि दयानंद का कहना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बहुत ही जबरदस्त उनकी प्रतिज्ञा है, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें चारों आश्रम के बारे में बहुत सारी शिक्षा दी गई है, पर आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबसे अधिक वेद मंत्र हैं तो गृहस्थ आश्रम के बारे में, सबसे अधिक शिक्षा वेद में दी है तो गृहस्थ आश्रम के बारे में। ये दो मंत्र मैंने लिए हैं, ये विवाह पहले के, विवाह में जाने के पहले जब बच्चे एक दूसरे को देख समझ रहे हैं तो, एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड कि वो जो भी है दे आर गेटिंग एंगेज्ड, वे एक दूसरे को वचन दे रहे हैं, अब मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, अब मैंने मन बना लिया है मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, है ना। और यहां सीक्वेंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले वो कन्या बोल रही है, इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इसी को कहते हैं स्वयंवर। सीता ने स्वयंवर किया था राम का, सीता राम के पास नहीं गई थी, राम और 20-25 बच्चे जो राजकुमार थे उस समय के, वो सब सीता के पास आए, है ना। तो स्वयंवर में क्या होता है कि कन्या का पिता या किसी तरह से एडवर्टाइज कर दिया गया, अब कन्या अपने घर में बैठती है और लड़के उनके पास आते हैं, वो उन 20 में से चुनाव करती है, वो 20 लड़के चुनाव करने नहीं आए हैं, है ना। तो द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द यंग वूमेन, तो इसी को कहा है स्वयंवर, शी डिसाइड्स हुम शी विल मैरी। अब इसने अब डिसाइड कर लिया तो ये क्या बोल रही है, देखिए, अपश्यम त्वा मनसा चेकितानम, त्वा यानी तुमको, अपश्यम मैंने बहुत अच्छी तरह से देख समझ लिया है, बैकग्राउंड चेक भी सब कर लिए, और मैंने क्या पाया है कि योर बॉडी योर माइंड एंड योर इंटेलेक्ट हैज द नेसेसरी रिक्विजिट नॉलेज. तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें समझ आ गई है. चेकिता न मनसा चेकिता. और यही नहीं है कि तुम बुद्धिमान हो समझदार हो, मैंने ये भी देख लिया है, ये भी जान लिया है. तपसो जातम तपसो विभूतम. पुरुषों को बड़ा तप करना पड़ता है, जैसे अभी अभी कमाने के लिए बिजनेस ट्रिप पे गया है, जाना पड़ता है, न जाए तो घर कैसे चलेगा, है ना. तो तप तपश्चर्या है ये सब, कि जो भी मौका आया वो काम करने के लिए पहले खड़ा हो जाना. पुरुष को यह होना चाहिए. तो उसने ये देख लिया है कि तुम बहादुर भी हो, तुम मेहनत भी कर सकते हो और तुम आलसी नहीं हो. तुम तपसो जातम तपसो. और मैं समझती हूं कि अब हमें फैमिली बनानी है तो उसके लिए मैं तुम्हें स्वीकार करूं. तो एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रजा. प्रजा में ही सारा रहस्य छिपा है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स द टाइटल ऑफ द स्लाइड द सिंगुलर पर्पज ऑफ मैरिज इज. यदि आपसे कोई पूछे आपने विवाह क्यों किया, मैं मुझे समाज में अच्छे बच्चे देने थे. समाज ने मुझे पाल पोस का बड़ा किया. पृथ्वी ने, अन्न जल और वायु ने, विश्व देवा परमात्मा ने मुझे पैदा किया. मुझे यह सब चीज साधन मिले, मैं आज बड़ा हो गया हूं. मैं जहां भी हूं आज मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मुझसे एक स्टेप आगे बढ़े. यही भावना मनोभव जनया देव्यम जन्म. मैं मनुष्य हूं, उनको मैं देवता बनाऊंगा. अपने से भी हाई क्वालिटी का बनाना है मुझे. तो यह जब हम बोलते हैं, यह जब फोकस होता है कि आई वॉन्ट टू मेक माई चाइल्ड बेटर देन वॉट आई एम. और यह कहने की बात नहीं है. परमात्मा का डिजाइन बड़ा जबरदस्त है. परमात्मा का डिजाइन बहुत जबरदस्त है. आपको किसी की प्रोग्रेस देखते हुए कभी कभी द्वेष हो सकता है. कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि कहे कि मुझे द्वेष नहीं होता. लेकिन कोई मां ऐसी नहीं है, कोई पिता ऐसा नहीं है जो कहेगा मेरे बच्चे की प्रोग्रेस देखकर मुझे द्वेष हुआ कभी. नहीं, वो परमात्मा ने हमारे अंदर ऐसा डाल दिया है कि जब मैं देखता हूं मेरा बच्चा, माई चाइल्ड इज ओवरटेकिंग मी, मुझे द्वेष नहीं होता, मुझे खुशी होती है. मुझे खुशी होती है. क्यों होती है खुशी? क्योंकि दैट इज वॉट इज माई ऑब्जेक्टिव. और जब मैं वैसे बच्चे, वैसी संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जब देता हूं तो माई मैरिज इज सक्सेसफुल, अदरवाइज आई एम फेलिंग समवेयर. है ना. तो फोकस यही है. द सिंगुलर पर्पज ऑफ मैरिज इज टू गिव राइज टू द बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हु इज सुपीरियर टू मी. तो उस ख्याल से कन्या ने यह कहा और उस युवक ने भी लगभग वैसा ही कहा, अपश्यम त्वा मनसा दिध्यानाम स्वायम. थोड़े शब्द अलग हैं, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा सकता, समय की सीमा है. लेकिन दे हैव एग्रीड टू कम टूगेदर एंड लिव. अब यदि फोकस पैजा पर है, फोकस, तो इट एंश्योर्स लव एंड हार्मोनी, इज इट नॉट. यदि आप दोनों पति पत्नी छोटी छोटी बात पर डिबेट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस हो, छोटा बच्चा बहस के शब्द नहीं समझ जाएगा लेकिन आपके चेहरे की भाव भंगिमा पूरा जानता है. बच्चे को सब मालूम है ये मेरे माता पिता के बीच में क्या चल रहा है. एंड ही इज नॉट हैप्पी विद इट, ही इज अपसेट. क्योंकि वो जो छोटा था उसके दिमाग में एक इमेज थी, उसके दिमाग में एक इमेज थी, माई मदर इज द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, My father is the best man in the world. और जब वो बड़ा हो रहा है, देखता है they are unnecessarily arguing, they don't agree on a simple thing, बोलता है they are failing me. You are letting him down, is it not? You cannot expect now that child to become a paja. आप fail हो गए हैं. तो this is why if your focus area is a good child, better child, आप बहुत सावधानी से बात करोगे. आपका व्यवहार 24 घंटे इज बीइंग अंडर द स्कैनर ऑफ द चाइल्ड. वो 24 घंटे आप दोनों को देख रहा है. और बच्चा तो ऐसा होता है जो सोते सोते भी समझ जाता है. वो कहे कि हवा भी कैसी है पता चल जाता। मैं भी थोड़ा उपासक हूं, मैं भी जब घरों में जाता हूं ना, घुसते ही मुझे पता चल जाता है इस परिवार में जो दो लोग रहते हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, मुझे पता चल जाता है। मैं उतना कोई छोटे बच्चे जैसा इनोसेंट नहीं हूं, छोटे बच्चे को तो सब पता चल जाता है। तो आप उस पर रहम कीजिए कृपया, एंड इफ यू हैव एडॉप्टेड दिस एज द फोकस एरिया कि मुझे पैजाई बनानी है, देन दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। आपकी ये सारी नीड्स तो होंगी प्लस मेनी मोर नीड्स विल टेक, है ना, जो लंबी लिस्ट जो बनाते हैं, मैरिज से मुझे ये मिलेगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा प्रोवाइडेड यू हैव लिव्ड टू द बेंचमार्क दैट परमात्मा हैज सेट दैट रिकॉल्स फॉर एब्सोल्यूट हार्मोनी लव नेचुरल जेन्युइन लव एंड अफेक्शन बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इफ दैट इज देयर यह सब कुछ आपको मिल जाएगा और बच्चे का विकास भी सही होगा। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे ये कुमार साहब बैठे भी हैं, ये आयुष्माज की में जो कुछ भी हो सब जानते हैं। मैं आयुष्माज की कोई निगेटिविटी नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आयुष्माज मेरे लिए माँ बाप सब कुछ है, लेकिन आयुष्माज में भी अभी एक फैशन आ गया, यह मेरे टाइम से आया, हमारी पीढ़ी में आया, पिछले 30-40-50 साल में आया। क्या आ गया है कि हम विवाह नहीं कहेंगे, ये एक फैशन आ गया। दूसरी जगह तो था, कहीं नन होते हैं, कहीं बौद्ध भिक्षु होते हैं, पर हमारी वैदिक संस्कृति में ऋषियों के भी पत्नियां थी, सब विवाह गृहस्थ आश्रम से जाते थे क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो आप एक्विजिशन नॉलेज है, जो विद्या प्राप्ति है, गृहस्थ आश्रम में एक बहुत विशेष प्रकार की विद्या मिलती है, उसको हम कहते हैं व्यवहार विद्या। व्यवहार विद्या ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको ये सब मिल जाएगा, खूब पढ़ रहे हैं आप, खूब रिविजन हो रहा है, आप पढ़ा भी हैं, टीचिंग इज ऑल्सो गुड वे टू लर्न टू होन यू, एक फिनिशिंग आ जाती है, लेकिन वो सब क्या आएगी एट द वर्ड लेवल, शब्द के लेवल। जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, और प्रैक्टिस में लाना ही गृहस्थ आश्रम है, वहां चैलेंज है कि बच्चे को मुझे अपने से भी अच्छा बनाना है, बेटी को भी अपने से अच्छा बनाना। अब भारत जैसी जगह में बेटी को बचा के रखना भी कोई आसान खाल नहीं है, कितना चैलेंज है नहीं। इन सब चीजों में आप यदि सफल हो गए, गृहस्थ होना ही पर्याप्त नहीं है, आप सदगृहस्थ हो गए, देन यू हैव ए बिजनेस टू गिव प्रवचन टू अदर्स, तब आप उपदेशक बन सकते हो, नहीं तो आप फेलियर बन जाओगे, आप खुद तो डूबी गए दूसरों को भी डुबा दोगे। तो ये मैं संकेत में कह रहा हूं, कुमार साहब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आय समाज में ये जो नई बाढ़ आ गई है इसकी रोकथाम करनी बहुत आवश्यक है। अब मैं जया वो बच्चों ने दो ने आपस में जो बात की, दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, तो अब जब विवाह मंडप में आते हैं तो ये बहुत बढ़िया सुंदर मंत्र बोलते हैं, समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानी नौ सम मातेश्वर समात। लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, समय कम है, बहुत जल्दी मैं जाऊंगा। मैं इसमें बहुत अच्छा एक मेटाफर बताया है, हम दोनों के हृदय अब कैसे मिल जाएंगे, जैसे जल की जो धाराएं मिल जाती प्रयाग में गंगा और यमुना बन जाती है, फिर एक नदी बन जाती, नो बडी कैन सेपरेट, उन दोनों पानी को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। सो दैट शुड बी द रिजॉल्व, वो रिजॉल्व है हम दोनों प्रजा की सृष्टि बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब हम दोनों हैं तो टू बॉडीज बट वी आर वन टूगेदर, बीइंग वन फॉर एवर, है ना, उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख। इतने ऐसे हो जाए तो ये मंत्र, देखिए वेद के मंत्रों की भावना इतनी गहरी है, समझा पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वी फील वोकेबुलरी इज नॉट हेल्पिंग अस। एक और मंत्र जो मैंने अभी आहुति भी डलवा दी, स्वस्ति पंथा मनुचयेम सूर्य चंद्र मसा विव पुनर्दताग्नता जानता संगम, इसमें भी उपमा दी है सूर्य और चंद्र जैसे, वो दोनों ही पूरे पृथ्वी की सेवा करें, पृथ्वी पर करोड़ों अरबों स्पीशीज है, सूर्य दिन में प्रकाश देता है, चंद्रमा रात में प्रकाश, सूर्य सारे पेड़ पत्तों में कुछ जान आ जाती है, कुछ उगने लग जाता है। चंद्रमा की रश्मियां उसको मिठास देती हैं, फल में रस दे देती हैं, फल में स्वाद दे देती हैं। तो वो फल पकाता है तो वो फल को स्वादिष्ट कहता है। तो दोनों मिलकर इस पृथ्वी पर इतने सारे प्राणियों को जन्म देते हैं, उनका पालन करते हैं। वैसे ही बोले हैं पति पत्नी, हम भी अपने छोटे से परिवार में मिलकर अपने बच्चों को पालन करेंगे और एक दूसरे का पुनर्दाता, केवल देने की भावना। यदि आपको याद है कि मैंने उसे क्या दिया, यू आर नॉट इन जेन्युइन लव। आपको बस याद होना चाहिए उसने आपको क्या दिया। देने की भावना इतनी हो कि आप नेचुरली स्वाभाविक दे रहे हैं, है ना, नेकी का कुएं में डाल बोलते। अग्नता, गिविंग विदाउट हर्टिंग। कभी कभी चाय भी बना के दी तो लो पी लो चाय वो इट इज हर्टफुल। देना भी तो अग्नता, विदाउट हर्टिंग, है ना, बहुत अच्छी तरह से। जानता विद ए सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसको किस समय क्या चीज की जरूरत है। संग में मही, फिर हमें साथ साथ चलना, समाज में लगे दोनों हमें एक साथ है। बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं। अब मैं एक और स्लाइड है मेरे पास, फिर मैं समापन पर जा रहा हूं। कितनी भी लव और हार्मनी हो, कितना भी अच्छा दाम्पत्य हो, नेचुरली हम सब इंटेलेक्चुअल थिंकर्स हैं, सोच विचार में कुछ अलग हो सकता है। देयर कैन ऑलवेज बी अ डिफरेंस इन व्यू, डिफरेंस इन ओपिनियन। तो हमेशा एक कोई भी संस्था होती है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है सर्वोच्च, द बक स्टॉप्स हियर, फाइनल अथॉरिटी हमेशा एक व्यक्ति में होती है। नहीं, जब भी डिफरेंस इन व्यूज होते हैं, फाइनली एक निर्णायक व्यक्ति होता है, हु अंपायर्स द डिसीजन, इज इट नॉट। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो परिवारों में भी यही झगड़ा आ जाता है कभी कभी, और जहां अच्छे परिवार है वहां तो कम, लेकिन दूसरी जगह ज्यादा। और मैं कह रहा हूं जब सब कुछ अच्छा है तो भी यदा कदा दिस क्वेश्चन में अराइज, हुज वर्ड इज फाइन। किसी ने, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी दैट सम डिफरेंस इन व्यूज में अराइज, देन द क्वेश्चन अराइज इज हुज वर्ड इज फाइनल। अब मैं जो कुछ बोलने वाला हूं वेद में से ही बोल रहा हूं, सही बात है, और मैं आज बोल भी सकता हूं कि मेरी पत्नी तो यहां नहीं बैठी है, वो अटलांटा में है, तो शी इज वेद का आदेश है, वेद निर्णय दे रहा है, शी इज द कैप्टन ऑफ द शिप। यदि कभी दो डिफरेंस हो तो परमात्मा ने कहा उस स्त्री की बात मानी जानी चाहिए। अब देखिए तीन मंत्र हैं, तीनों एक साथ आते हैं एक वेद में, बड़े अच्छे हैं, पर मैं विस्तार से नहीं जानना चाहता, बहुत छोटा भी लिखा हुआ है। इंद्रश्चिद्या तदव्यवीति अशाष्यम मन, मैं थोड़े थोड़े शब्द ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे, वेद की भाषा कठिन नहीं होती है। अशाष्यम मन, अभी ये पत्नी के बारे में बोला जाए, पहले हमेशा पत्नी की बात होती है फिर पति की बात, ऐसा ही चक्कर है परमात्मा के हिसाब से, पहला नंबर पत्नी का ही आता है। तो पत्नी के बारे में ईश्वर पति को समझा रहा है, तुम सब बातें कहो, अपने सजेशन दे दो, लेकिन इतनी कोशिश मत करना कि तुम पत्नी के मन पर शासन करना चाहो। उसका मन कैसा है, अशास्यम, उस पर शासन करने जाओगे तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा। बट हां, यू आर फ्री टू गिव हर ऑल द वंडरफुल सजेशंस यू हैव, लेकिन लीव इट टू हर। अशास्यम मना, उसके मन पर शासन करने की चिंता मत करना कभी। फिर उसने कहा, अब ये पति को समझाया, बहुत सी बातें हैं मैं नहीं कह सकता, अब दो मिनट में मैं खत्म करना चाह रहा हूं, पर यहां एक शब्द आ गया उत्तरा, पति को समझाया है पत्नी तुमसे आगे है, उत्तम की दिशा में, तुम उत हो तो वह उत्तरा है, वो तुमसे आगे है, क्योंकि अब वो अगले अंत में बताएंगे क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा ही बनाया है। अब वो बता रहे हैं अगले मंत्र में, मैंने ये दुनिया ऐसी ही बनाई है कि पत्नी हैज द फाइनल वर्ड, और बहुत सोच समझ के परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि उसे नई संतान पिता की गोद में नहीं देनी होती है, पत्नी की गोद में देनी होती है। सो ऑलवेज the matter of family, child development, she will have instinctively, इसी को बोलते हैं feminine instinct, और उसका उसने बड़ा अच्छा कहा है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, स्त्री को परिवार यदि एक नौका है, एक शिप है, तो इसका हेड, इसका कैप्टन कौन है? स्त्री ही ब्रह्मा, मैंने उसको ब्रह्मा अपॉइंट करके ही इस दुनिया में भेजा है, और वह इसकी मानता देखिए, और पत्नी ऐसी है, सब कुछ होते हुए भी शी इज द कैप्टन, अधः पश्यस्व मोपाय। आप देखेंगे बाजार में घूमेंगे शॉपिंग, चाहे अमेरिकन हो चाहे इंडियन महिला हो, भारतीय नारी या कोई भी, स्वभाव से स्त्री हमेशा उसकी निगाहें नीचे होती है, वो नीचे देखती, आकड़ के नहीं चलती हो, है ना, उसके पास सारी शक्ति है, लेकिन इसके साथ साथ ही उसके अंदर वह विनम्रता का भाव है। तो दिस इज व्हाट इज हिज डिजाइन। आज की दुनिया में फैशन हो गया, ये क्या बोलते हैं, सेक्सिस्ट आउटलुक ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, ही हैज हिज ओन फैमिली मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स, ही हैज शी हैज हर ओन फेमिनिन इंस्टिंक्ट, एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट पर्पज ऑफ ऑल दिस, सो दैट देयर इज अ हार्मोनी इन द फैमिली। लेट मी समराइज इट, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ फोकस्ड टुवर्ड मेकिंग अ गुड चाइल्ड पैजा, देन अ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विल कम नेचुरली। यदि आपने जेन्युइन लव एंड हार्मोनी घर में बना लिया है, सुख शांति तो अपने आप ही आएगी, उसके लिए कोई ज्यादा फिर मेहनत नहीं करनी है, इंक्लूडिंग लव एंड हार्मोनी इन द हाउस। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, फिर डिसएग्रीमेंट भी ज्यादा नहीं होंगे, बट इफ देयर इज, लेट हर सिक्स्थ सेंस प्रिवेल। थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन।